ओम शांति। एक बार, तीन सूफी फकीर हज की यात्रा को निकले। उसमें से एक भारत का था। यात्रा का अंतिम पड़ाव था, एक गांव में वो ठहरे और चलते चलते बहुत थक गए थे, भूखे भी थे। उनके पास कुछ पैसे थे, उन पैसों से उन्होंने हलवा खरीदा और कोई नहीं चाहता था कि हलवा हम बांट कर खाएं। हर एक चाहता था मैं पूरा खा लूं। पहला फकीर कहता है, मैंने बहुत उपवास किए, बहुत तपस्या की, जैसा तपस्वी जीवन मेरा रहा शायद तुम दोनों का कभी नहीं हो सकता, इसलिए संसार को मेरी अधिक आवश्यकता है, इसलिए पूरा हलवा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा फकीर कहता है, तुमने उपवास बहुत किए परंतु ज्ञान मेरे पास ज्यादा है, संसार को उपवास की नहीं ज्ञान की आवश्यकता है, तुम जाकर स्वर्ग में उपवास करना, अभी तो अस्तित्व को और संसार को मेरी आवश्यकता है। तीसरा भारत का फकीर होता है, वो कहता है, ना ही मैंने उपवास किए, ना ही मैंने साधना की तपस्या की और ना ही मेरे पास ज्ञान है, मैं तो एकदम साधारण सा हूं और भगवान की अनुकंपा तो साधारण व्यक्तियों पर ही होती है, इसलिए हलवा मुझे मिलना चाहिए। फिर अंत में वो तीनों एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम अभी सो जाते हैं और रात में जो सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा कल सुबह हलवा उसका होगा, तो बेस्ट ड्रीम। तो वो लोग सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो पहला फकीर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो कहता है, कहाँ है हलवा, मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने जो स्वप्न देखा आज तक शायद इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा, मैंने स्वयं भगवान को देखा और मैंने भगवान के कदम चूमे, क्या आज तक ऐसा स्वप्न किसी ने देखा, इसके लिए हलवा तो मेरा ही है। दूसरा कहते है, पहले मेरा भी तो स्वप्न सुन लो, मेरे स्वप्न के सामने तुम्हारा स्वप्न तो कुछ भी नहीं है, तुमने तो केवल भगवान को देखा और तुमने भगवान के चरण छुए, मैंने तो भगवान को देखा और भगवान ने स्वयं मुझे गले लगाया और मेरा मस्तक चूमा, तो मेरा स्वप्न तो तुमसे तो कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, इसके लिए लाओ हलवा मेरा है। भारत का फकीर उसको पूछते, तुमने कुछ देखा क्या, वो कहता है, मैंने भी देखा पर क्या बताऊं, छोड़ो न बताऊं तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो साधारण हूं, ना तो तपस्या की ना मेरे पास ज्ञान है। दोनों पूछते, नहीं फिर भी बताओ, वो कहता है, मेरा स्वप्न तो अत्यंत साधारण था, भगवान रात मेरे स्वप्न में आए और मुझे कहने लगे, अरे मूर्ख सो रहे हो, पहले हलवा खा लो फिर सोना, तो मैं भी क्या करता, भगवान का आदेश था तो रात में मैं उठा और सारा हलवा खा लिया। तो भारत के फकीर भी बड़े चतुर होते हैं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, हम आत्माओं में और संसार की आत्माओं में क्या अंतर है, इसका बहुत सुंदर रीति से बाबा ने वर्णन किया है। ऐसे सात, ऐसी सात बातें बताइए, और ये सात बातें ऐसी है कि सारे दिन भर में ब्राह्मण परिवार के बीच रहते हुए जब जब हम किसी को देखें ब्राह्मण आत्मा को, तो ये सातों बातें याद रखनी है कि इसमें ये सातों बातें हैं। तो उसके प्रति हमारे मन में दुर्भाव, अशुभ भाव, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, इस तरह के कोई भी निगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न नहीं होगी। एक तो ये बात है आज की मुरली में। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान के जो रत्न हैं, जो सागर ने भर भर कर हमें दिए हैं, इन रत्नों से हमें क्या करना है। यहां पर फिर सात बातें करनी है। रत्न मिल गए, अब इन रत्नों का क्या करना है, ऐसी फिर सात बातें। और दो और चीजें, साइलेंस पावर क्या है, उसका क्या महत्व है, और अंतिम गीत और नशा। तो ऐसी ये 16 बातें आज की क्लास में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आमंत्रित भाई बहनों से जो मुलाकात है उसकी चर्चा फिर कभी। तो जब जब किसी ब्राह्मण आत्मा को देखो सारे दिनचर्या में, तो ये सात बातें तुरंत बुद्धि में आ जाए। सबसे पहली, ये चतुर सुजान बाप की कैसी आत्मा है, चतुर, चतुर बच्चा है। संसार की आत्माएं सोचते हैं वो चतुर है और हम भोले हैं, परंतु हम आत्माओं का समान क्या है कि हम चतुर हैं और वो भोले हैं। और हमारी सबसे बड़ी चतुराई कौन सी है, बाप को पहचानने की चतुराई। तो जब भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा को देखो तो क्या सोचो, ये इस संसार की सबसे चतुर आत्मा है, क्योंकि इसके पास कौन सी चतुराई है, कौन सी क्लेवरनेस है, कौन सी श्रूडनेस है, इसने बाप को जाना, पहचाना, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो, चाहे कुछ भी बोलता हो, कुछ भी करता हो, चाहे बुद्धि बहुत कम है सेवा के क्षेत्र में, परंतु ये समझ तो उसमें है, भगवान को तो जान लिया, ये तो चतुराई उसमें है कि रात में उठ के हलवा खा लिया, सुबह तक नहीं रुका रहा। संसार की आत्माएं लड़ रही है, डिबेट कर रही है, बड़े बड़े धार्मिक लोग, शंकराचार्य, इमाम, पैगंबर, पैगंबर, अवतार, धार्मिक पुरुष, कोई भी उस परमात्मा को नहीं जानते, तथाकथित आस्तिक, वास्तिक भी नहीं है, और जो अपने आप को नास्तिक कहते वास्तव में बाबा की परिभाषा में वो नास्तिक वो भी नहीं है, क्योंकि जो आस्तिक है वो वास्तव में आस्तिक नहीं है, और जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं वो उस परिभाषा से भी नास्तिक नहीं है, क्योंकि आस्तिक नास्तिक है, क्योंकि आस्तिक भगवान को नहीं जानते इस रीति से वो नास्तिक है, और जो अपने आप को नास्तिक कहते इस आधार से वो भी नास्तिक नहीं है। तो बाबा की तो परिभाषा ही अलग है। तो जब भी किसी ब्राह्मण आत्मा को देखो तो क्या सोचो, ये चतुर आत्मा है। कौन सी चतुराई है इसमें, बाप को पहचानने की चतुराई, ये सबसे पहली पॉइंट। दूसरा, इसने मूल को जाना है। किसको जाना, मूल, मूलाधारम गगनशत सदृशम, वह जो परमात्मा है, वह जो अगम अगर, जिसे अगम अगोचर है, जिसे कोई नहीं जानता, उस मूल बिंदु को, उस मूल तत्व को, उस चैतन्य बीज को जिसने जाना है, मूल को जानने वाली आत्मा है। सभी ब्राह्मण आत्माओं ने मूल को जाना है, संसार विस्तार में फंसा हुआ है। जितना विस्तार में जाता है खोज बढ़ती जाती है। फिर से वही प्रश्न उत्पन्न होता है, इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या है, फिर ये ऐसा क्यों है, फिर वो वैसा क्यों है। एक बाप को जान लेना अर्थात सब कुछ जान लेना, क्योंकि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। एक अंग्रेजी कवियत्री है, एमिली डिकिंसन, बहुत सुंदर वाक्य उसने अपनी कविता में लिखे हैं भगवान के लिए। दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड धावर्ट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन धी। यदि ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये संसार, ये ब्रह्मांड सब कुछ नष्ट हो जाए और केवल तुम अकेले बच जाओ, एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन धी, सब कुछ फिर भी तुम में समाया रहेगा, क्योंकि वो बीज है, क्योंकि वो मूल है। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने किसको जाना है, मूल को पहचान लिया, मूल को जान लिया। संसार विस्तार में भटक रहा है, विस्तार में गोते खा रहा है। तो जब भी किसी ब्राह्मण आत्मा पर दृष्टि पड़े तो सोचना ये चतुर है, सोचना इसने मूल को जाना है। तीसरा, ब्राह्मण आत्मा अर्थात एक में पदम को पा लिया। संसार की आत्माएं अरब खरब गिन रही है, इसने तो एक में ही पद्म को पा लिया। ऐसी ये महान आत्मा है। तो फिर हमारी अवगुणी दृष्टि नष्ट होगी, क्योंकि ये वो आत्मा है जिसने एक में पद्म को जान लिया, एक में पद्म को पा लिया। कितनी महानता इसमें समाई हुई है। नहीं तो इस ब्राह्मण पथ पर चलते चलते जब जब दूसरों को हम देखने लगते हैं, तो जब ज्ञान में आए थे तब जो उमंग था और जो उत्साह था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। एक अव्यक्तवाणी में बाबा से प्रश्न पूछा गया था, बाबा जो जब हम ज्ञान में आए थे तो कितना उमंग था, कितना पुरुषार्थी थे, अब क्या हुआ, क्यों ये पुरुषार्थ कम हो गया। बाबा ने दो तीन कारण बताए थे, उसमें से पहला कारण बताया था, बच्चे क्योंकि तुमने दूसरों को देखना चालू कर दिया, अवगुणी दृष्टि हो गई तुम्हारी। तो आज की मुरली बताती है कि जब भी दूसरों को देखो तो क्या सोचो, चतुर है, क्या सोचो, मूल को जाना, क्या सोचो, एक में पद्म को पाने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। चौथा, पहचान की आंख इसके पास है। क्या मिल गई इसको, पहचान की आंख, पहचान के नेत्रधारी। याद प्यार में कहा, यह आत्मा ने पहचान लिया है, वो तीसरा ज्ञान का नेत्र इसके पास है। जीव जगत ईश्वर का रहस्य क्या है इसे पता है, जो कोई नहीं जानता। शास्त्र नेति नेति करते रह गए, परंतु वो क्या है किसी को पता नहीं। तो हम ये सोचे एक दूसरों को देखने के बाद कि इसके पास क्या है, पहचान का नेत्र है, पहचान की आंख है, द थर्ड आई ऑफ विजडम, इसका ये नेत्र खुला है। संसार की आत्माओं के पास दो आंखें हैं, दो आंखों से बहुत कुछ देखती है, जानती है, अन्वेषण करती है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कीन है, परंतु क्या उनके पास तीसरा नेत्र है? देह को देखने वाला चमड़ी का नेत्र है, हमारे पास आत्मा को देखने वाला रूहानी नेत्र, रूहानी नयन है, स्पिरिचुअल आईज। पांचवा, संसार की आत्माएं क्या क्यों ऐसे वैसे के विस्तार में ढूंढ रही है, और तुम ब्राह्मण आत्माओं ने मेरा तो एक बाबा, इस संकल्प में स्थित हो गई, स्थिर हो गई, बुद्धि एकाग्र हो गई। तो जब जब ब्राह्मण आत्माओं को देखो तो क्या सोचो, ये वो ब्राह्मण आत्माएं हैं जिसके मन से क्या क्यों कब कहा कैसे सारे प्रश्न विलीन हो गए हैं। चाहे बाबा का कैसा भी बच्चा हो, कम से कम पुरुषार्थ करने वाला हो, फिर भी उसके मन से, उसके मुख से ये बात तो हमेशा निकलती है कि मेरा तो एक बाबा। चाहे मन में कई और भी बैठे हैं, परंतु कहता तो यही है कि मेरा तो एक बाबा। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ जिनका बाप से प्यार है। ऐसा कोई है जो कहता है नहीं मेरा कम प्यार है इसके लिए मैं नहीं उठाऊंगा? कोई नहीं कहता है, नॉट रेडी। तो ये वो आत्मा है जिसके मन में एक संकल्प है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। छठवा, जब भी किसी ब्राह्मण आत्मा को देखो तो ये सोचो इसके पास एक की समझ है। संसार के पास अनेक बातों की समझ है, पर उस एक की समझ नहीं है, मुरली के शब्द है। इनके पास क्या है? तुम्हारे पास एक की समझ। संसार की आत्माओं के पास अनेकों की समझ है, ये कैसा था वो कैसा था, इसकी बायोग्राफी उसकी ऑटोबायोग्राफी, इसके जीवन में क्या हुआ उसके जीवन में क्या हुआ, बहुत जानते हैं। परंतु भगवान की जीवन कहानी क्या है, भगवान कब आता है, क्या करता है, किसी को कुछ पता नहीं। कहां आता है कोई खबर नहीं। अवजानंती माम मुड़ा, हे अर्जुन सुन, जब मैं धरती पर आता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि वो मुझे जान नहीं पाते। अवजानंती, मुझे नहीं जानते। तो भगवान को जानने वाले, एक की जिनके पास समझ है, वो हम हैं। और हम क्या सोचे एक दूसरे को देखते समय, इसके पास एक की समझ है, संसार के पास अनेक की समझ है। लास्ट पॉइंट सातवा, संसार की आत्माएं कौन है? VIP। और हम कौन है? सेंट। परंतु भगवान का VIP कुछ और ही है, उनको जाके सुना मत देना कि तुम ये हो। वेरी इनोसेंट पर्सन, अबोध है, अनजान है, ना समझ है, पता ही नहीं उनको। और हम सब कौन बन गए? सेंट। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, कैसे माना जाए कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है? भक्ति में कहावत है, यदि भगवान की कृपा तुम पर हो रही है तो उसका लक्षण है कि तुम्हारी मुलाकात संतों से होने लगेगी। बार बार संतों का आगमन जीवन में हो जाना अर्थात भगवान की कृपा हो जाना, महान आत्माओं का मिलना अर्थात परमात्मा की कृपा हो जाना। और जिस सभा में इतनी सारी महान आत्माएं उपस्थित है, और जिस सभा में हम यहाँ उपस्थित है, अर्थात इस समय प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। हरि अनंत, हरि कृपा अनंता। वो अनंत है, उसकी कृपा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि प्रेम अनंता। तो हम सब कौन है? सेंट। बाबा ने कहा है, जो माया से इनोसेंट है वो सेंट है, जो टेंट में रहने वाले हैं वो सेंट बन जाएंगे। शांतिवन में कभी मुरली चली थी, जगह नहीं थी, तो माता है भाई बहने कहां रुके थे? टेंट में। तो बाबा ने उनके लिए कहा था, जो जो टेंट में रुके वो सब कौन बन जाएंगे? सेंट। सेंट अर्थात संत। सेंट बहुत प्यारा शब्द है अंग्रेजी भाषा का। मूल शब्द सैंक्टस से आया है, सैंक्टस अर्थात पवित्र। वो सेंट उसे कहा जाता है जो पवित्र है। सेंट उसे कहा जाता है जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी असामान्य पवित्रता है, असामान्य होलीनेस है। ऐसी स्थिति में जो पहुंचते हैं उन्हें सेंट कहा जाता है। शब्द क्रिश्चियनिटी से निकला, ईसाई धर्म से निकला, पर धीरे धीरे हर एक धर्म में यह पाया जाता है। भारत में सेंट को संत कहते हैं, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जाओ तो उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, इस्लाम में वाली, सिख धर्म में गुरु, जैन धर्म में अरिहंत या अरहत, क्रिश्चियनिटी में एक दूसरा शब्द है रबाए, गुरु को कहा जाता है। ये शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनमें बहुत अधिक पवित्रता है। बाबा कह रहे हैं, वो संत तुम हो, वो सेंट तुम हो। संसार के लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, परंतु वास्तव में वो वेरी इनोसेंट पर्सन है, अज्ञान है, अबोध है, परवश है, उन्हें पता ही नहीं। ये भगवान की परिभाषा है। तो जब भी आपस में एक दूसरों को देखो तो क्या समझो? कौन चल रहे हैं? कौन है ये सब? संत, सेंट है। किसी एक संत का किसी गांव में आगमन हो जाता है तो क्या करते हैं गांव वाले? क्या करते हैं? कितना स्वागत, कितना सम्मान। एक संत, और यदि वो संत आकर कहे, मैं हिमालय में 10 साल, 20 साल, 30 साल तपस्या कर रहा था और मेरे तपस्या के अंत में मुझे भगवान के साक्षात्कार हुए और साक्षात्कार होने के बाद ही मैं तुम्हारे गांव में आया हूं, तो क्या करेंगे? भगवान को बाजू में उसी को भगवान बना देंगे। तो ये सात बातें आज की मुरली से। जब भी एक दूसरों को देखो तो क्या सोचो? ये आत्मा चतुर है। कौन सी चतुराई है इसमें? भगवान को समझने की चतुराई। जब भी किसी आत्मा को देखो तो क्या समझो? ये इसने मूल को जाना है। जब भी किसी ब्राह्मण आत्मा को देखो तो क्या सोचो? तीसरा, इसमें इसने एक में पदम को पाया है। चौथा, पहचान की आंख इसके पास है। तीसरा, नेत्र इसका खुला है। पांचवा, संसार क्या क्यों ऐसे वैसे के विस्तार में लगा है और ये किसमें स्थिर है, स्थित है? मेरा तो एक बाबा। अगला, एक की समझ इसके पास है। संसार वालों के पास अनेक की समझ है, विज्ञान है संसार वालों के पास, विज्ञान का विस्तार है, विज्ञान से बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं, परंतु अंतर जगत के जो आविष्कार है, अंतर जगत की चेतना के जो आविष्कार है, चेतना में जो छिपा हुआ खजाना है, उसका, उस विज्ञान को कोई खबर नहीं। अंदर का जो जगत है, माइक्रोकॉजम, मैक्रोकॉजम को जान लिया है। चिदाकाश, चिदाकाश को जाना है, घटाकाश। तो हम वो आत्माएं हैं। और लास्ट, ये कौन है सभी यहाँ बैठे हुए? ये किसकी सभा है? संतों की सभा है। संसार के जितने संत हुए होंगे द्वापर से अब तक, वो सब यहाँ उपस्थित है इस समय। जो भी महान आत्माएं हुई थी वो हम ही थी, हम ही है। तो ये सात बातें। फिर एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, सागर से क्या, सागर क्या दे रहा है तुम्हें? थालियों पर रत्न भर भर के दे रहा है। बाप कौन है? रत्नाकर। रत्नाकर अर्थात, रत्नाकर का क्या अर्थ है? रत्नाकर के चार पांच अर्थ है। रत्नाकर अर्थात समुद्र, रत्नाकर अर्थात रत्नों का समूह, रत्नाकर अर्थात रत्नों, वह सागर जिसमें, वह खान जिसमें रत्न है। और रत्न महात्मा बुद्ध को, रत्नाकर महात्मा बुद्ध को भी कहते हैं। और रत्नाकर वाल्मीकि का पुराना नाम, जो पहले रत्नाकर डाकू था। पांच अर्थ है रत्नाकर के। बाबा कह रहे हैं रत्नाकर अर्थात समुद्र। बाबा अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं कि रत्नाकर बाप है, अर्थात ऐसी खान जिसमें रत्न है, ऐसा समूह जिसमें रत्न है, ऐसा समुद्र जो कि रत्न प्रदान करता है। तो रत्नाकर बाप वो है, हमें क्या दे रहा है? रत्न दे रहा है। और यदि हमें रत्न मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सात बातें करेंगे उन रत्नों के साथ, और जो सारे दिन भर होनी चाहिए, एक भी कम नहीं सातों में से। अक्टूबर 2013 लखनऊ के से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है संग्रामपुर। अक्टूबर 2013 में एक साधु था वहां, और उस साधु ने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, और स्वप्न में देखा कि वहां जो एक किला है उसके नीचे 1000 टन सोना गड़ा हुआ है। उसका नाम सरकार था। उस साधु ने यह कहा कि मैंने स्वप्न देखा है और मेरे स्वप्न में राजा राम सिंह बख्श, 19वीं शताब्दी का जो राजा था, वो आया, और वो उसका महल था, और उसने मुझे बताया, उसके भूत ने मुझे बताया, और उसके भूत को भारत की बहुत चिंता हो रही है, इंडियन इकोनॉमी की, कि भारत का क्या होगा, और उसने बताया कि तुम लोग इसको खोदो। तो उस साधु ने खत लिखा भारत के प्रेसिडेंट को, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया को, SASI को, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को, बहुत समय खत लिखता गया, इंक्वायरी हुई, और फिर खुदाई चालू हुई। वास्तव में भारत सरकार ने खुदाई की, एक महीना तक खुदाई चली, और बाद में खुदाई बंद कर दी गई, और जितना खोदा था उनको भरने की कोशिश की, क्योंकि कुछ भी मिला नहीं। जो नई सरकार आई उसने बड़ी आलोचना की पुरानी सरकार की, सारे विश्व में भी आलोचना हुई, भारत देखो क्या कर रहा है, एक साधु ने स्वप्न क्या देख लिया और भारत सरकार भी उसमें सम्मिलित हो गई वो खुदाई करने में। बहुत सारे अखबार विश्व भर के, किसी ने लिखा कि वी न्यू दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, सपेरों का देश है, नाउ वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर। अभी हमको तो विश्वास हो गया कि भारत अंधश्रद्धा का देश है जहां पर ये सब चीजें होती है। तो एक खजाना, एक किलो भी नहीं मिला, 1000 टन तो दूर। उस खजाने को पाने के लिए एक मास तक लोग लगे रहे, खोदते रहे खोदते रहे, और जहां वो खुदाई चालू थी वहां हजारों दर्शक, हजारों टूरिस्ट, कैमरा, फोटो, मीडिया, सब कुछ, स्टॉल लग गए, भिखारी आ गए, सारा बाजार खड़ा हो गया रोज देखने के लिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिला तो क्या करेंगे। 1000 टन सोना, कुछ भी नहीं हाथ आया किसी के भी। क्या ऐसा कोई सोना होगा? होगा या न होगा पता नहीं, पर भगवान जो हमें हीरे जवाहरात और रत्न दे रहे हैं वो इस तरह के स्थूल रत्न नहीं है, वो चैतन्य रत्न है। तो रत्ना कर बाप, रत्नों की थालियां भर भर कर तुम्हें दे रहा है। इन रत्नों से सात चीजें करनी है। सबसे पहला, ज्ञान रत्नों से खेलना। क्या करना है इन रत्नों से? सारे दिन भर खेलते रहना, इसका क्या अर्थ है? खेलना अर्थात क्या करना? चिंतन करना, मनन करना। खेलना अर्थात क्या करना? खेलने में क्या होता है? एंजॉयमेंट, एंजॉय करना ज्ञान को, निरस ना लगे। वही 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 चीजें हैं, नए नए ढंग से उसी ज्ञान को ढूंढना, खोजना, देखना, नए दृष्टिकोण अपनाना, नई नई विधियों से उसी ज्ञान का मनन, चिंतन, अध्ययन करना। ये सब जब करेंगे तब होगा कि हम ज्ञान से खेल रहे हैं। रत्नों से खेलने की ये परिभाषा है। ऐसे नहीं कि रत्नों से खेलना अर्थात खाली मुरली पढ़ना और पढ़ाना, ये रत्नों से खेलना नहीं है। खेलना अर्थात उसमें इन्वॉल्व होना, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, भावनात्मक उसमें डूब जाना, तब कहा जाएगा कि हम रत्नों से खेल रहे हैं। तो क्या करना है इन रत्नों से? रखे नहीं रख देना अपनी डायरी में, खेलते रहना दिन भर। खेलने से क्या होता है? एंजॉयमेंट, मजा आता है खेल में। यह पहला काम करना है इन रत्नों के साथ। दूसरा, रत्नों से पलते रहना है। स्वयं की पालना ज्ञान से करनी है। स्वयं की पालना के लिए हम किसी पर निर्भर नहीं। ज्ञान इतना शक्तिशाली है, ज्ञान इतना बड़ा धन है, इसी धन से हम स्वयं की पालना करें। अपो धीपो भव, महात्मा बुद्ध ने जाते समय अपने शिष्य से कहा किसी पर भी निर्भर नहीं रहना, केवल अपना प्रकाश स्वयं बनना, अपना दीपक स्वयं बनना। अप दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। और ज्ञान वो प्रकाश है जो मन के सभी अंधकार को दूर करेगा। क्यों मन में उलझने, क्यों मन में दुख, क्यों मन में पीड़ा, क्यों मन में दर्द? ज्ञान की कमी है, क्योंकि मन में अंधकार है, अहंकार का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, तिमिरांधस्त अज्ञानंद तिमिरांधस्य, अज्ञान का अंधकार है। उस अज्ञान के तिमिर को ज्ञान से मिटाना है। तो स्वयं की पालना स्वयं करनी है। किससे करेंगे? ज्ञान से। ज्ञान से पालना करनी है, ज्ञान से पलने वाले बाबा कह रहे हैं। ज्ञान सबसे बड़ा पोषक, सबसे ज्यादा पोषक तत्व ज्ञान में है। न्यूट्रिशन, चॉप चीनी, हेल्थ टॉनिक, सबसे पावरफुल इंजेक्शन, सबसे पावरफुल गोली, विटामिन सिरप, सब कुछ ज्ञान है। तो दूसरी चीज क्या करना है सारे दिन भर? इस ज्ञान से स्वयं की पालना करनी है। तीसरा, इस ज्ञान से पहला खेलना, दूसरा पालना करना, तीसरा इन रत्नों में झूलते रहो। बाबा ने कहा झूलते रहो का क्या अर्थ हुआ? एंजॉय करते रहो। झूलना अर्थात इस ज्ञान में रमन करते रहना, मजा उठाते रहना, लुप्त उठाते रहना इस ज्ञान का। कितनी सुंदर आज बाबा ने पॉइंट कही, इस तरह की आपस में चर्चा करते रहना। ये पॉइंट आपने कभी सुनी थी? मैंने तो पहली बार सुनी। इस तरह से आपस में रू रिहान करना कि ये बात एकदम नई है, ये शब्द एकदम नया है, ये बाबा क्या कह रहे हैं, आपस में इस तरह बात करना, अर्थात झूलते रहना। आनंद की अवस्था है। झूलने में क्या होता है? झूलते समय क्या महसूस होता है? आनंद। तो ज्ञान रत्नों से झूलते रहना अर्थात आनंद की अवस्था, ये तीसरा। चौथा, इन ज्ञान रत्नों की गिनती करते रहना। बाबा ने कहा पॉइंट्स की गिनती करते रहो बुद्धि में। आज 5 पॉइंट, 10 पॉइंट्स, इस मुरली से ये पॉइंट बहुत पावरफुल थी, बुद्धि में गिनते रहना। और गिनती करने से क्या होता है? कमाई। कमाई वाले गिनती करते हैं ना, आज कितना कमाया, कितनी खुशी होती है। तो रात में गिनती करना, आज कौन सी ज्ञान की नई पॉइंट्स की हमने कमाई की। ज्ञान की बुद्धि में, ज्ञान की पॉइंट्स की बुद्धि में क्या करना? गिनती करना। ये चौथा काम, रोज के काम है ये। पांचवा ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाओ, बाबा ने कहा। कार्य में लगाने से क्या होगा, उसके प्रैक्टिकल स्वरूप का अनुभव होगा, हम उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएंगे। अगला, इस ज्ञान रत्नों में बिजी रहो तो क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? बहुत सुंदर वाक्य है, नहीं दूसरी और एक चीज है, देखना, सुनना, सोचना, बाहर की बातों का सोचना, देखना, सुनना, ये सारा क्या, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा, ये सब देखना ही बंद हो जाएगा, फुर्सत ही नहीं होगी, बाबा ने कहा, ये सब करने के लिए, व्यर्थ का देखना, सुनना और सोचने के लिए। जब क्या सोचते रहोगे, ज्ञान में बिजी रहोगे तब। और क्या चीज हो जाएगी ज्ञान में बिजी रहने से, माया दूर से ही भाग जाएगी। सुंदर उदाहरण है, महर्षि दयानंद सरस्वती, कहानियों में आता है और उन्होंने खुद लिखा है, उनसे प्रश्न पूछा गया, क्या काम विकार आपको सताता नहीं, आप सन्यासी हो, अकेले रहते हो? उन्होंने कहा कि काम विकार तो रोज ही आता है, पर मैं अपने कार्य में इतना व्यस्त होता है, वो मुझे पूछता है आऊं, तो मैं कहता हूं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं अभी बिजी हूं, मुझे किताब लिखनी है, मुझे तो बहुत सारा संसार का कल्याण करना है, तो मैं व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, कम लेटर ऑन, तो वो वेट ही करते रहता है बाहर। तो सबसे बेस्ट विधि है व्यर्थ से मुक्त होने की, खुद को बिजी कर देना, रोज अपने आप को नए नए टॉपिक्स दो, मुरली से निकालो टॉपिक्स, खुद को दो और उस पर चिंतन चालू करो, किसी और को देने की आवश्यकता नहीं, खुद ही को चिंतन दो कि आज मुझे इस विषय पर सोचने, आज बाबा ने पहचान की आग कहा, ये पहचान की आग क्या होती है, स्टार्ट राइटिंग, लिखना चालू करो पहचान की आग पर, आज बाबा ने रत्नाकर कहा अपने आप को क्यों, हमें सौदागर कहा क्यों, लिखना चालू करो। और सातवां पॉइंट है, ज्ञान रत्नों का सौदा करना है, और सौदा जब करते हैं तब माला माल बन जाते हैं, हम मास्टर रत्नाकर बन जाते हैं। तो ज्ञान रत्नों से ये सात चीजें रोज करनी है, कौन कौन सी, खेलना, दूसरा पालना करना, किसकी, माया की स्वयं की, तीसरा झूलते रहना ज्ञान रत्नों में, अच्छा सा एक झूला बना के रखो अपने घर में, जाके बैठ जाना और झूलते रहना उसमें, चौथा गिनती करते रहना, आज कितनी पॉइंट्स थी मुरली में, 5 थी, 10 थी, ज्यादा पॉइंट्स होगी तो ज्यादा खुशी, कम पॉइंट्स होगी तो कम खुशी, ज्यादा सिक्के गिनने वालों को ज्यादा खुशी होती है कि आज कमाई थोड़ी ज्यादा हुई, तो गिनते रहना आज कौन कौन सी पॉइंट्स थी, भूल गए फिर से डायरी खोलो फिर से पढ़ो, फिर भूल गए फिर से डायरी खोलो फिर पढ़ो, पढ़ते जाना अभ्यास करते जाना, जड़मती होत सुजान, सिल पर भी निशान पड़ जाएगा, रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान, इसके लिए प्रयत्न को नहीं छोड़ना, भूले फिर ढूंढो फिर खोजो फिर पढ़ो फिर याद करो। अगला, ज्ञान रत्नों का क्या करेंगे, कार्य में लगाएंगे, सारे दिन भर यूज करेंगे कि इस पॉइंट को सारे दिन भर में कहां प्रयोग किया जा सकता है, बहुत काल का निर्विघ्न रहने का अभ्यास वरदान में कहा है, कैसे इस पॉइंट को सेवा में प्रयोग करें, क्योंकि सेवा में जाते ही डिस्टरबेंस चालू होता है, सेंटर पर पहुंचे डिस्टरबेंस चालू, घर पहुंचे डिस्टरबेंस चालू, डिपार्टमेंट पहुंचे डिस्टरबेंस चालू, मधुबन में है तपस्या कर रहे मैं फरिश्ता हूं, डिपार्टमेंट में गए तो सीधा नीचे, फरिश्ता तो पंख लगाकर उड़ जाता है कहीं तो, और हम बच जाते हैं कलयुगी, संगम युगी भी नहीं, कोई और ही। अगला, ज्ञान में बिजी कर दो स्वयं को, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आज मेरा फ्री दिन है तो चलो मैं कहीं घूम के आता हूं, फ्री कहां से हुए, सारा मुरलिया पढ़ के हो गई, सारा चिंतन हो गया, कितना कार्य बाकी है, कितना कुछ करना बाकी है। उत्तिष्ठ जागृत, जागो। लास्ट सौदा, तो सौदा करना अर्थात डील, ग्रेट डील, सबसे पावरफुल डील है ये, सबसे फायदे वाली डील है ये। बाकी सभी सौदों में क्या है? घाटा। ये एक ही ऐसा सौदा है, एकमात्र ऐसा सौदा है जिसमें कोई घाटा है, कोई भी घाटा नहीं। तो ये हो गई सात बातें। फिर बाबा ने बात की अंतिम दो बातें, गीत और दूसरा बताया नशा। ब्रह्मा बाबा का कौन सा गीत था? हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना प्यारा कितना मीठा। ये गीत हमने भक्ति मार्ग में भी इस तरह के गीत गाए, और अभी भगवान हमारे लिए गीत गा रहा है कि कितने मीठे और कितने ये प्यारे बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में हमने भगवान को ढूंढा, संगम युग पर भगवान ने हमको ढूंढा, भक्ति मार्ग में हम उसके चरणों में गिरे। अभी संगम युग पर वो कहता है मैं सर्वेंट बनकर तुम्हारी सेवा में आया हूं। क्या हमने उससे मांगा था? चरणों में जगह दे दो, तूने दिल में समा दिया। थे एक झलक के, एक नजर के प्यासे, और उसने क्या कर दिया? आंखों में समा लिया। अप्रत्याशित फल दे दिया, जो कभी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा हमें वो मिल गया। वो हमारे गीत गाते, गीत जिसके अब वो हमारे गाए। हीरे जैसा मिला है जीवन, तो वो हमारे बैठ गीत गा रहा है, हमारी बैठ महिमा कर रहा है। भक्ति मार्ग में उसका कीर्तन करते थे, भजन करते थे, गीत गाते थे, अब वो हमारा गुणगान कर रहा है। इसको स्मृति में रखो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नशा, स्वाभिमान का नशा चढ़ेगा। क्या होगा? नशा चढ़ेगा। तो गीत और नशा, पंद्रहवीं पॉइंट, भगवान हमारे लिए क्या क्या गीत गाता है उसका चिंतन करना। रोज कितनी महिमा करता है वंदे मातरम, जिसे संसार ने ठोकर मारा, भगवान ने आके उन्हें ठाकुर बना दिया। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, संसार ने कहा, सन्यासी ने कहा कि नारी नरक का द्वार है, बाबा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। माताओं को कहा कि एक दिन ऐसा आएगा सारे सन्यासी तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। कैसी अद्भुत बातें हैं भगवान की, न भूतो न भविष्यति, कहीं पर लिखी नहीं गई, कहीं पर जिसका वर्णन नहीं, वो भगवान अब आके सुना रहा है। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए? अब नशे की पांच बातें। नशा कब चढ़ता है संसार में? कोई दारू पी ले तो नशा चढ़ जाता है, खाली थोड़ी सी पी ले तो? नशा चढ़ने के लिए पांच बातें चाहिए। एक तो डोज ज्यादा चाहिए, तब नशा चढ़ता है। नशा चढ़ना अर्थात वो ऐसे लड़खड़ाते हुए चलना चाहिए, उसे पता ही नहीं वो कहां जा रहा है और कहां गिर गया, इसको कहते हैं नशा चढ़ना। तो नशा चढ़ने के लिए सबसे पहली बात, संसार का नशा पहले हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाबा ने कहा वो नशा बहुत नुकसान वाला है, वो जो नशा है वो चढ़ने के लिए बहुत पीनी पड़ती है, थोड़ा सा पी ले कोई तो नशा थोड़ी चढ़ता है। तो डोज ज्यादा चाहिए, एक। दूसरा, बार बार पीना पड़ता है, एक बार पी लिया और काम पूरा हुआ, ऐसा नशा नहीं, बार बार पीते रहो पीते रहो पीते रहो तो शाम तक तो एकदम ही निढाल होके गिर पड़ेंगे, ऐसा नशा चढ़ जाता है। तीसरा, नीट सॉल्यूशन चाहिए, उसमें पानी ज्यादा मिला दिया तो नशा चढ़ेगा क्या? नीट सॉल्यूशन अर्थात प्योर, एकदम अनअडल्ट्रेटेड। चौथा, और साथ साथ में लिमका, इसके दारू के साथ में बाकी भी शरबत वगैरह पी लिया तो नशा चढ़ेगा? बिल्कुल, उसके साथ में और कुछ नहीं पीने का, खाली दारू। और पांचवा, जब दोस्तों की महफिल होती है, संगठन नहीं महफिल, तब थोड़ा ज्यादा नशा चढ़ता है। तो ये पांच चीजें चाहिए जब इंटॉक्सिकेटेड होता है व्यक्ति, इधर भी पांच चीजें चाहिए। अभी नशा क्यों नहीं चढ़ रहा है ज्ञान का, क्योंकि डोज कम है। डोज को बढ़ाओ, डोज को बढ़ाओ। दूसरा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, बार बार पियो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ओडी से बीडी, बीडी से टीडीएस, टीडीएस से क्यूडीएस, क्यूडीएस से फोर आवरली, वन आवरली, कभी कभी कोई कोई पेशेंट को वन आवरली देना पड़ता है चीजें, तब कहीं जाके स्टेबल होता है एक एक घंटे में। तो तीसरा, नीट सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारी मिलावट नहीं चाहिए। केवल अव्यक्त मुरलिया, गहन अध्ययन। चौथा, बहुत सारी इधर उधर की चीजें, ज्ञान से संबंधित चीजें अगर है तो ठीक है, परंतु उसका विस्तार इतना है कि व्यक्ति उसमें भटक सकता है, इसलिए उधर नहीं जाओ। यदि विश्वास है कि भटकेंगे नहीं तो ठीक है, परंतु जो भयभीत है कि विस्तार में चले गए तो भटक जाएंगे, वो केवल सार में ही रहो। और पांचवा, संगठन में ज्ञान की चर्चा करना, एक दूसरे से ज्ञान की रूरियान करना। किताब है एक बहुत सुंदर, यज्ञ की, यज्ञ में वहारे मैं ब्राह्मण आत्मा, उसमें एक जगह ब्राह्मणों के कर्तव्य लिखे है, दस, दसवां कर्तव्य लिखा है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। अव्यक्त महावाक्यों का संकलन है वो किताब, देखिए ये किताब, वारे में ब्राह्मण आत्मा, लिटरेचर डिपार्टमेंट में है, बहुत सुंदर किताब है, जिसमें एक टॉपिक है ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है, लिस्ट गिनाई है, अंतिम कर्तव्य लिखा हुआ है, जो बाबा के महावाक्य है किसी अव्यक्त मुरली से, कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। आपस में क्या करना, पूछते रहना, ये क्या, वो क्या, ऐसा क्या कहा बाबा ने, वो क्या कहा, ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये पॉइंट का अर्थ क्या है, इसमें रेस करना। तो नशे के लिए पांच चीजें चाहिए। लास्ट 16वीं पॉइंट, साइलेंस पावर। क्या कहा बाबा ने, साइलेंस पावर। संसार की जो आत्माएं हैं उन्हें अब लग रहा है रास्ता है, कोई मार्ग है, तुम्हें क्या करना है, एकता और दृढ़ता, संगठन की एकता और दृढ़ता हो, वो साधन होगा मार्ग दिखाने का। शुभ संकल्प और शुभ भावना, इनसे उनके अंदर फल उनको प्राप्त होगा और उनके अंदर श्रेष्ठ कार्य करने के संकल्प जागृत होंगे। और इन सब का आधार है साइलेंस पावर। बीच में बाबा ने एक ड्रिल कराई है साइलेंस की। बाबा ने कहा इस साइलेंस पावर से अब संसार का कल्याण करो। तो अपने अंदर साइलेंस की पावर भरनी है। एक शिकारी होता है, वो शिकार करते करते जंगल में भटक जाता है और थका मांदा एक झाड़ के नीचे विश्राम करता है। आंख खुलती है तो देखता है एक खोपड़ी है मनुष्य की वहां रखी हुई। इतना थका हुआ होता है, आसपास कोई नहीं होता है, सोचता है इसी से बात करूं, तो उस खोपड़ी से कहता है हेलो। वो खोपड़ी कहती है हेलो, तो एकदम से उसको होश आ जाते, सारी थकान मिट जाती है। खोपड़ी बात कर रही है, ऐसे कैसे इसने बात कर लिया। तो वो उससे पूछता है क्या तुम बात करती हो, वो कहती है हाँ मैं तो बात करती हूँ। तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुंची, वो कहती है ज्यादा बोलने के कारण। इतना वो सुनता है और भागता है वहां से, कुछ तो है गड़बड़, और सीधा राजा के पास पहुंचता है और कहता है मैंने एक खोपड़ी देखी जंगल में जो बातें करती है। तो राजा कहते हैं ऐसी बेहूदी बातें मत बताओ, ऐसा कभी होता है? वो कहता है मैंने खुद सुना है, उसने मुझसे बात की। राजा कहता है अगर बात झूठी निकली तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। वो कहता है तैयार हूं चलो। तो सारा महल और सारा गांव वहां पहुंचता है और वो खोपड़ी के पास, वो आदमी राजा को के सामने उस खोपड़ी से कहता है हेलो, तो खोपड़ी बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है, चुप, आवाज भी नहीं। अरे कहता है अरे बोलो ना, अभी तो तुम बोल रही थी। खोपड़ी बिल्कुल आवाज नहीं करती, बहुत मनाता है खोपड़ी को बोलो बोलो, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल चुप। फिर राजा कहता है इसका सर कलम कर दो, हमारा समय बर्बाद किया, और उसका सर काट दिया जाता है। राजा और सारे गांव वाले चले जाते हैं, अब सर और खोपड़ी आपस में आजू बाजू, और वो खोपड़ी कहती है हेलो, तो वो सर कहता है उससे अरे तुम अभी हेलो कह रही हो, पहले हेलो करने को क्या जाग हो गया था तुमको जब मैं सबको लेके आया था यहाँ के यहाँ पर? तो वो खोपड़ी कहती है उस सर से, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? सर बोलता है ज्यादा बोलने से। यही तो उत्तर खोपड़ी ने भी दिया था सबसे पहले, तुम यहाँ कैसे पहुंची? ज्यादा बोलने से। तो ज्यादा बोलने से क्या होगा? तो बाबा कह रहे हैं साइलेंस पावर अपने अंदर बढ़ानी है। साइलेंस पावर के दो अर्थ है, एक तो स्थूल मौन भी और सूक्ष्म मौन भी। परंतु जब बाबा साइलेंस पावर कहते हैं उसका अर्थ होता है शांति की शक्ति, उसका अर्थ होता है योग की शक्ति। वो केवल चुप रहना नहीं है, वो तो केवल मुख का हुआ, बाबा तो चाहते हैं मन का मौन, शांति की शक्ति। इस शांति की शक्ति से संसार की आत्माओं का कल्याण करो। शुभ भावना, शुभ संकल्प, एकता, दृढ़ता, ये तुम्हें करना है। तो ऐसी ये टोटल कितनी पॉइंट्स थी? 16 पॉइंट। पहले 7 बातें जो ब्राह्मण परिवार में प्रयोग करनी है एक दूसरों को देखते समय। दूसरी 7 बातें ज्ञान रत्नों की जो सारे दिन भर होमवर्क के रूप में मुरली से हमको करनी है, कि ये जो मुरली है ये ज्ञान रत्न है, अब इनके साथ हमें ये दिन भर में 7 बातें करनी है। और फिर बताया साइलेंस, और फिर बताया लास्ट में गीत और नशा, और लास्ट में साइलेंस। एक लास्ट बात बताते हैं फिर क्लास को पूरा करेंगे। बाबा ने संत की बात कही, एक बहुत हंसी की बात हमको याद आ रही है। एक बंजारा व्यक्ति था जिसने एक गुरु की बहुत सेवा की, और वो गुरु इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसने अपना गधा उसको दे दिया बंजारे को। तो बंजारे की अब बहुत खुश हो गया, अब तक तो अकेला घूमता था सामान लेकर, अब गधे पर डालकर घूमने लगा। गधे ने उसका आधा काम करना चालू कर दिया और गधे ने उसकी बहुत सेवा की। परंतु एक दिन ऐसा आया गधा बूढ़ा हो गया और गधे की मृत्यु हो गई, क्योंकि गधा इतना प्यारा था और इतना अच्छा अनन्य सेवाधारी था। तो उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इसकी मैं कब्र बना दूं। तो उसने गधे की कब्र बनाई और बैठ के रोने लगा। और जब रो रहा था तो बाजू से एक व्यक्ति गुजरा और उसको लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी महान हस्ती की कब्र है, इसलिए तो ये व्यक्ति रो रहा है। तो वो कुछ पैसे फेंकता है कब्र के सामने, तो ये आदमी उसको कहने ही वाला था, हंसी भी आती है, पर सोचता है क्यों मैं इसकी भावना को ठेस पहुंचाऊं, ठीक है पैसे फेंक रहा है तो फेंकने दो। पर वो सोचता है ये तो व्यवसाय बहुत अच्छा है, फिर बहुत लोग आने लगते हैं और रोज पैसे फेंकने लगते हैं, और धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है एक बहुत महान आत्मा संत की कब्र बाहर है, और जहां पर जो जाएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। तो रोज लोग आते हैं, रोज पैसे फेंकते हैं, और इस व्यक्ति का व्यवसाय एक नया धंधा चालू हो जाता है, और गांव में एक नया संत की कब्र भी बन जाती है। ऐसा कई साल चलता है। फिर एक दिन वो जो पहला संत था जिसने इसको गधा दिया था वो आता है, और वो उसको तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि वो जैसे ही गांव में आता है उसको गांव वाले कहते हैं गांव के बाहर एक महान संत की कब्र है, वहां से जरूर जाना। तो वो संत पहुंचता है और तुरंत पहचान लेता है इसको, ये तो वही है जिसने मेरी सेवा की थी और मैंने इसको गधा दिया था। वो कहता था ये क्या चक्कर है? वो कहता है आपसे क्या छुपाना, ये वही गधा है जो आपने दिया था और ये उसी की कब्र है और अब ये संत बन गया है। तो वो संत कहता है अब मैं तुझे एक दूसरा राज बताता हूं। वो राज ऐसा है कि मेरी भी जो पालना हो रही है, मेरे गांव में भी ऐसी एक संत की कब्र है और वो ये जो गधा है उसी की मां है उधर। तो इसी से हमारी पालना हो रही है, और संसार के लोग और अंधश्रद्धालु लोग इस तरह की कब्र, इस तरह के दरगाह इसमें मान लेते, जो बात एक बार दिल में बैठ गई, जिसको एक बार संत स्वीकार कर लिया वो संत बन जाता है। फिर उसने चाहे कुछ किया या ना किया वो कोई पूछता नहीं है, सदियों से वो संत के रूप में माना जा रहा है। तो संतों की ऐसी संसार की धारणा है। बाबा कह रहे तुम हो सच्चे सच्चे संत, वो नहीं, ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले, श्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को ऐसे रत्नाकर बाप के रत्नों से, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, पलने वाले मास्टर रत्नाकर बच्चों को, ऐसे सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे पहचान की, कौन सी पहचान, मूल पहचान नहीं, कौन सी पहचान, पहचान के त्रिनेत्री नेत्रधारी आत्माओं को, ऐसे मेरा बाबा के गीत गाने वाली आत्माओं को, ऐसे स्नेही आत्माओं को, सिखिलदी आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।